नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का अधिनियम लागू। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू। फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। 2 दिन का वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन आज से मुंबई में और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज एडिलेड में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और ओडिशा के दौरे पर जाएंगे। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे और वे कोल्लम में मेवारम और कावनाड को जोड़ने वाले 13 किलोमीटर बाईपास के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी उपस्थित रहेंगे। बाद में प्रधानमंत्री कोल्लम के आश्रमम मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में प्रसिद्ध श्री पद्मनाभन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और वे स्वदेशी दर्शन योजना के अंतर्गत मंदिर परिषद में विभिन्न विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा में बलांगीर में भी विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क झारसुगुड़ा का लोकार्पण करेंगे और बलांगीर बीच पुली से एक नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी सोनपुर में केंद्रीय विद्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 महीने में ओडिशा 2 बार आ चुके हैं। पहला बार खुर्धा आके ओडिशा के लिए 14,523 करोड़ रुपए का विभिन्न केंद्रीय प्रकल्प को राष्ट्र के उद्देश्य में समर्पित किए हैं। 5 जनवरी को उनका दोबारा आगमन पर उसने 4,733 करोड़ रुपए का विभिन्न प्रकल्प उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। आज उनका तीसरा ओडिशा दौरे पे बलांगीर आकर 1,545 करोड़ रुपए का विभिन्न प्रकल्प राष्ट्र के समर्पित करेंगे। बलांगीर से आकाशवाणी समाचार के लिए सुधांशु धड़ा।
सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का अधिनियम कल से लागू हो गया। सरकार ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू करने के लिए 14 जनवरी की तिथि अधिसूचित की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले शनिवार को अधिनियम को मंजूरी दी थी। ये अधिनियम संविधान की धारा 15 और 16 में संशोधन कर राज्य को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। गुजरात सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में 10% आरक्षण संबंधी केंद्र के ऐतिहासिक फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। उच्चतम न्यायालय ने किसी भी कंप्यूटर प्रणाली के संचालन में हस्तक्षेप, निगरानी और उसके विवरण की छानबीन करने संबंधी सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एस के कौल की पीठ ने केंद्र सरकार से 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायालय केंद्र सरकार की 20 दिसंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सरकार की अधिसूचना में 10 केंद्रीय जांच एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अंतर्गत कंप्यूटर प्रणाली में हस्तक्षेप करने और उसके विवरण की छानबीन और विश्लेषण का अधिकार दिया गया है। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 आज मुंबई में आरंभ होगा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विश्व में अपनी तरह के पहले इस आयोजन में 86 से अधिक देश भाग लेंगे। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन का शीर्षक है सभी को और विशेष रूप से 6 अरब लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा। शिखर सम्मेलन में विमानन क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और आने वाले समय में हवाई यात्रा को और सुगम बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की षड्यंत्रकारी गतिविधियों के कारण कश्मीर अब भी एक चुनौती बना हुआ है। कल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में सशस्त्र सीमा बल के क्षेत्रीय मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि देश के सुरक्षा बल पाकिस्तान की ओर से भारत में घुसपैठ के जरिए भेजे जा रहे आतंकवादियों से कारगर ढंग से निपट रहे हैं। नक्सली घटनाओं की चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में इनमें 50% की कमी आई है। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुंभ 2019 आज प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान के बाद शुरू हो गया। विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने पहले डुबकी लगाई। मेला प्रशासन के अनुसार लगभग 1,25,00,000 श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति पर डुबकी लगाने की संभावना है। स्नान के लिए 21 घाट बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पहली बार 3 महिला थाना पुलिस थाने बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुंभ को स्वच्छ रखने के लिए 1,20,000 शौचालय बनाए गए हैं।
पूरा मेला क्षेत्र शंख घंटियों और नगाड़ों की ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण तथा भजन कीर्तन से गुंजायमान हो रहा है। मकर संक्रांति पर लोग खिचड़ी भोग और कपड़ों का दान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के सुरक्षित स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 जल पुलिस थानों के अलावा 9 NDRF जल आपातकालीन टीमों को सेवा में लगाया गया है। पूरे क्षेत्र को 20 सेक्टरों और 9 जोन में बांटकर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। यहां 40 पुलिस स्टेशन, 3 महिला पुलिस थानों सहित 58 पुलिस चौकियां स्थापित की गई है, जहां 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। शशांक कुमार के साथ मुल्तान सिंह यादव, आकाशवाणी समाचार, कुंभ मेला, प्रयागराज।
प्रवासी भारतीय दिवस के प्रतिनिधियों के प्रयागराज में कुंभ में भाग लेने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वाराणसी में इस महीने की 21 तारीख से शुरू होना है। भारतीय संस्कृति और धरोहर पर वार्षिक आयोजन गंगा महोत्सव विभिन्न गंगा घाटों पर इस महीने की 21 तारीख से 23 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हो रहे प्रयागराज में कुंभ मेले के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत और विदेश के श्रद्धालु देश की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और बड़े समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि इस कुंभ में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लेंगे। मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न इलाकों में आज मनाया जा रहा है। ये पर्व ठंड की समाप्ति और जाड़े की फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है। ये त्यौहार देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। इसे तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। बिहार में मकर संक्रांति का पर्व पूरी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोग आज तड़के से ही पवित्र स्नान के लिए विभिन्न नदियों के घाटों पर उमड़ रहे हैं।
मकर संक्रांति के मौके पर गंगा, गंडक, सोन समेत अनेक नदियों में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बेगूसराय की सिमरिया घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। नदियों और सरोवरों में स्नान कर लोग अंजलि से भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं। मिथिलांचल समेत राज्य के अन्य भागों में आज के दिन दही चूरा खाने की परंपरा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
पश्चिम बंगाल में आज मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर के लगभग 27,00,000 श्रद्धालु गंगा सागर और सागर द्वीप पर डुबकी लगा रहे हैं। ये श्रद्धालु पवित्र स्नान के बाद कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। गंगा सागर के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। उधर हमारे कर्नाटक संवाददाता ने बताया है कि राज्य में मकर संक्रांति का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
संक्रांति का दिन गर्मी के मौसम के आगमन का संकेत देता है। आज तिल के उपयोग को पवित्र माना जाता है। तिल का स्नान आज प्रमुख आचरण है। ग्रामीण भाग में आज किसान अपने उपजाओं की पूजा करते हैं और गाय और बैल को सजाकर अग्नि ज्वाला के ऊपर से चलाकर ले जाते हैं, जिसे कन्नड़ा में किच्चू हाई सूद कहते हैं। गाँव में बैलगाड़ियों को काफी सुंदरता से सजाया जाता है, जिसमें परिवार सदस्य मंदिर जाते हैं। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
तमिलनाडु में आज पोंगल पर्व मनाया जा रहा है। विभिन्न दलों के नेताओं ने फसल कटाई के इस पर्व पर लोगों को बधाई दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पर्व तमिल कैलेंडर के अनुसार पवित्र महीने का पहला दिन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति, उत्तरायण, भोगाली बिहू और पोंगल पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि ये पर्व लोगों के जीवन में खुशहाली, शांति और संपन्नता लाएगा। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि पूरे देश में विभिन्न नामों से मनाया जाने वाला ये पर्व लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि प्रकृति और परंपरा का ये पर्व लोगों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली लाए। हैदराबाद में कल पहली एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खेल स्पर्धा 2019 का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के आयोजन अवसर पर जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री जेएस भाभोर ने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है। सरकार नवोदय विद्यालयों के समान ही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। इन स्कूलों में जनजातीय छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। देश में पहली बार आयोजित इन खेल स्पर्धाओं में देशभर से आए छात्र भाग ले रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज सवेरे एडिलेड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार सवेरे 8:50 पर आरंभ होगा। तीन मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। सिडनी में पहला मैच उसने 34 रन से जीता था। तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच इस महीने की 18 तारीख को मेलबर्न में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को बधाई दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि देशवासियों को सैनिकों के कर्तव्य और बलिदान पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि वे अदम्य साहस और बहादुरी को नमन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने कहा है कि इसराइल फलस्तीन संघर्ष समाधान का एकमात्र रास्ता दो देश का फार्मूला है। उन्होंने कल फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के बाद ये बात कही। अलग फलस्तीन राज्य के लिए श्री गुतरस का ये मजबूत समर्थन शांति प्रक्रिया के लिए अमरीकी योजना जारी होने से पहले आया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद विशाल। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारेबाजी के मामले में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित 10 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने को सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, राजद्रोह की चार्जशीट, कन्हैया खालिद समेत 10 आरोपी। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन वाली कुमारस्वामी सरकार पर संकट के बादल मंडराने को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, कर्नाटक में तोड़फोड़ के खेल से फिर गरमाई सियासत। दैनिक जागरण के शब्द हैं, कर्नाटक में फिर नाटक, कुमारस्वामी सरकार के 13 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। मुंबई हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा को भारत लाने की तैयारी का समाचार जनसत्ता में है। पत्र लिखता है, अमेरिका में सजा काट रहे तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कराने के लिए अमेरिकी प्रशासन से बातचीत में जुटे विदेश, गृह और कानून मंत्रालय के अधिकारी। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आध्यात्मिक समागम कुंभ के आज से प्रयागराज में शुरू होने को सभी समाचार पत्रों ने अहमियत दी है। अमर उजाला ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, संगम पर आस्था की संक्रांति। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, कुंभ का शाही आगाज आज, 49 दिन चलने वाले मेले में 12 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद। खुदरा और थोक महंगाई में लगातार कमी से सरकार और आम जनता दोनों को राहत मिलने की खबर भी अधिकांश समाचार पत्रों में है। हरिभूमि ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है, आम आदमी को राहत की डबल डोज, थोक के बाद रिटेल महंगाई भी 18 महीने में सबसे कम। देश की पहली वर्दीधारी महिला पहुंची दक्षिणी ध्रुव, राष्ट्रीय सहारा में है। पत्र लिखता है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात आईपीएस अपर्णा कुमार 35 किलो वजन लेकर बस पर 111 मील की दुर्गम यात्रा तय कर दक्षिण ध्रुव पहुंची।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का अधिनियम लागू हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो गया है। फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति आज देश के विभिन्न भागों में मनाया जा रहा है। दो दिन का वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन आज से मुंबई में आरंभ होगा। और क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज एडिलेड में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।